Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. ज्ञान सरिता बीके जगदीश भाई के साथ।
हमारे जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इनका बैलेंस क्यों जरूरी है और इनका बैलेंस कैसे हो, क्योंकि बाबा ने बहुत सी मुरलियों में कहा है कि बैलेंस इज ब्लिस। बैलेंस रहेगा तभी आनंदमय अवस्था रहेगी। इंसान के पुरुषार्थ की जो सबसे बड़ी प्राप्ति है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, सर्वोच्च, वो है ब्लिस, आनंद। मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन शांति और सुख से भी जो ऊंची चीज है वो है ब्लिस। जब परमात्मा की याद में मन टिक जाता है, मग्न हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, लगन में मग्न हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तो उस वक्त जो अनुभव होता है देह को और देह की दुनिया को भूलकर, देह के सब संबंधों को भूलकर, जब उस एक परमात्मा की याद, एक वो, दूसरा मैं, तीसरा न कोई, ये जब पावरफुल स्टेज होती है और पवित्रमय जीवन होता है, गुण वाला, धारणा वाला जीवन होता है, और उस प्रेम से, उस लगन से बाबा को हम याद करके उसमें स्थित हो जाते हैं एक रस, तो वो जो अनुभव है उसको कहा जाता है आनंद। तो वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राप्ति है, पुरुषार्थ की सबसे बड़ी प्राप्ति है, ये संगम युग का सबसे बड़ा गिफ्ट है, बाबा का वरदान। और बाबा कहते हैं कि वो बैलेंस से आता है ब्लिस। तो इसका मतलब यह है कि बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बैलेंस के थोड़ी बहुत प्राप्ति तो होगी, छोटी मोटी, मध्यम या कनिष्ठ, उत्तम प्राप्ति जो ब्लिस की है वो नहीं होगी। तो इन चारों सब्जेक्ट्स का बैलेंस, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स जो हम कहते हैं ज्ञान, योग इत्यादि, वास्तव में ये बड़े सिंपल शब्द हैं। अगर आप इनकी गहराई में जाएं तो इस ज्ञान में कई ज्ञान भरे पड़े। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाएं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं उनके ज्ञान के। ये फिलॉसफी सेक्शन, फिलॉसफी डिपार्टमेंट, दर्शन विभाग, जहां पर कुछ फिलॉसफी या दर्शन पढ़ाया जाता है। ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का विभाग, ये हिस्ट्री, इतिहास का विभाग पढ़ाते हैं ना। अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स हैं, नॉलेज को लोगों ने बांट रखा है कई हेडिंग्स में, लेकिन ये जो हमारा ज्ञान है जिसको हम ये ज्ञान कहते हैं, इसमें सभी ये ज्ञान समाये हुए हैं। इस ज्ञान को लेने के बाद और किसी ज्ञान के लेने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि जितने भी ज्ञान प्राप्त किए जाते हैं वो दुख और अशांति की निवृत्ति के लिए उनका प्रयोजन होता है। किसी न किसी समस्या को सुलझाने के लिए कोई नया इन्वेंशन, जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो कोई भी जो नया ज्ञान निकला है वो कोई ना कोई बात जानने के लिए, और कोई ना कोई बात जानना क्यों चाहते हैं हम, ताकि जो हमारे सामने समस्या है या दुख और अशांति है उसको हम समाप्त करें और कोई चीज हमारे वश हो जाए, वो हमें लाभदायक हो। अब जैसे मेडिकल साइंसेस, ये भी सब्जेक्ट है, मेडिकल साइंसेस क्यों पढ़ते हैं, ताकि रोग हो जाए तो उसको, रोग का कारण जानकर उसका निवारण किया जाए, लेकिन रोग हो ही ना तो फिर क्या जरूरत है इसकी। सचमुच में मेडिकल कॉलेजेस नहीं होंगे, फार्मेसीज नहीं होंगी, केमिस्ट नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे, नर्सेज नहीं होंगी, ये सब नहीं होगा, उस ज्ञान की जरूरत ही नहीं। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको धारण कर लेने से, या ये योग ऐसा योग है, आज भी मुरली में था कि योग से हेल्थ प्राप्त होती है, और हमारे यहाँ हेल्थ को कहा गया है स्वास्थ्य, स्व में स्थित हो जाओ तो स्वास्थ्य हो जाएगा, योग द्वारा स्व में स्थित हो जाते हैं तो स्वास्थ्य हो जाता है, उसमें फाइबर हेल्दी बन जाते हैं। तो ये ज्ञान ऐसा हो गया जिसके उसकी जरूरत नहीं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट होता है लॉ, वकील बनते हैं लोग, LLB पढ़ते हैं ना, जैसे डॉक्टर बनते हैं तो वैसे लॉ भी पढ़ते हैं, दर्शन हो, इतिहास का, जिसको फिलॉसफी और हिस्ट्री कहते हैं। फिलॉसफी और हिस्ट्री पर बहुत बुक्स है, ये भी एक विषय है, लेकिन ये विषय तो किसी ने नहीं पढ़ाया। जिस इतिहास को पढ़ने से हम आत्मा का, जन्म जन्मांतर का इतिहास जान जाए, वो इतिहास तो कोई पढ़ाता ही नहीं कि भाई एक जन्म समाप्त होने के बाद आत्मा फिर अगले जन्म में क्या बनी, या पिछले जन्म वो क्या थी, इस तरह से तो कोई ज्ञान देता नहीं। तो इस ज्ञान में नाम इस विषय का ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान में सब ज्ञान समय हुए, ये अगर हमें मालूम होगा तो हम समझेंगे। कई दफा हम कहते हैं ना ये कितना पढ़े हुए हो या ये पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन बाबा कहता है सबसे बड़ी पढ़ाई है। अगर इस पढ़ाई को कोई पढ़ लेता है तो वो विश्व का मालिक बन जाता है, नरसिंह नारायण बन जाता है। इसी ऊंची कोई प्राप्ति नहीं हुई ना, इसका मतलब यह है ये सर्वश्रेष्ठ। ये अगर हमें मालूम होगा तो ज्ञान का भी एक, जिसको नारायणी नशा कहते हैं, कितना अनमोल चीज बाबा ने हमें दिया है, हमें उसकी वैल्यू होगी। नहीं तो हमें ऐसे लगेगा कोई बड़ा भारी प्रोफेसर होगा, उसके साथ हम बात करेंगे तो हमारा गला ही ठीक नहीं काम करेगा, आवाज ही हमारी कांपती हुई होगी, हम समझेंगे हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं और ये तो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान है। और अगर हम ये समझेंगे ठीक है ये अपने विषय का विद्वान है, हमने आर्य को रिगार्ड तो देना ही है जैसे हमने आपको कल कहा, लेकिन जो पढ़ाई हमें बाबा ने पढ़ाई है ये पढ़ाई तो उसके पास है नहीं, ये सबसे श्रेष्ठ चीज तो ये है। तो फिर हमारे माइंड में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये हमारा ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सेवा, सोशल वर्क बहुत होते हैं दुनिया में सर्विस करने के हिसाब से, जिसको बाबा खिदमतगार कहते हैं। आपको मालूम है इतिहास आपने पढ़ा हो तो रेड शर्ट्स खुदाई खिदमतगार एक उसका नाम था, ये बादशाह खान आता है ना वहां से पाकिस्तान से, कई दफा अखबारों में पढ़ते होंगे। तो उसकी जो पार्टी थी पार्टीशन से पहले, उनकी पार्टी का नाम खुदाई खिदमतगार, अंग्रेजी में उसको रेड शर्ट्स कहते थे क्योंकि वो लाल वो कपड़े पहनते थे, नाम उनका खुदाई खिदमतगार। तो बाबा समझाते कि खुदाई खिदमतगार तो वास्तव में हम है, हम एक सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ऐसे ही लड़ाई के दिनों में विदेशियों ने सेल्वेशन आर्मी बनाई थी। सेल्वेशन आर्मी क्या करती थी कि गरीबों को अमीरों के जो कपड़े हो वो जो उनके काम के ना हो वो उनको दे देते थे, सेल्वेशन आर्मी को दवाइयां बची वो सेल्वेशन आर्मी को दे दी, कोई फर्नीचर आपके पास फालतू है आपके काम का नहीं सेल्वेशन आर्मी को दे दी, वो सेल्वेशन आर्मी वाले गरीबों को दे देते, तो उनको एक प्रकार से सेल्वेशन देते, या कोई रोगियों की चिकित्सा करना फर्स्ट एड देना ये करते थे, लेकिन वो सेल्वेशन थोड़ी होती थी। सेल्वेशन का मतलब तो मुक्ति है, मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाए, एक थोड़ी सी समय के लिए कोई चीज किसी को दे दी तो उससे सेल्वेशन थोड़ी होगी। तो वो लोग समझते थे कि बहुत बड़ी सोशल सर्विस कर रहे हैं ये सेल्वेशन आर्मी वाले, लेकिन हमारी जो सर्विस है इसमें फिर कभी सर्विस करने की जरूरत नहीं रहती, किसी को मांगने की जरूरत नहीं रहती, कोई मोहताज रहता ही नहीं। अभी जो लोग कहते हैं हैंडीकैप की सेवा करो, जो बेचारे लूले लंगड़े अपाज है उनकी सेवा करो, अपाज ही कोई नहीं रहता, गरीब भी कोई नहीं रहता, दुखी कोई नहीं रहता, रोगी कोई नहीं रहता। सोशल सर्विस तो ऐसी की जाए जिससे किसी भी प्रकार की समस्या हल हो जाए, तो ये सोशल सर्विस भी कितनी ऊंची प्रकार की है जिसको बाबा स्पिरिचुअल सोशल सर्विस कहते हैं, तो तब हमें इसका भी महत्व जानना चाहिए। ऐसे ही योग का भी, ऐसे ही धारणा का भी, उसके विस्तार में हम नहीं जाते क्योंकि जितनी भी वास्तव में धार्मिक संस्थाएं हैं धार्मिक ग्रंथ हैं वो धारणा कराना चाहते हैं, लेकिन कहीं भी कंप्लीट धारणा नहीं है। एक मिसाल दो मिसाल में दे दूं मैं विस्तार करने की बजाय, नहीं तो फिर ट्रैफिक अधूरा रह जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रह्मचर्य की बात देखिए, किसी भी संस्था में चले जाइए क्या कहेंगे, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, भगवान ने कहा है अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। अच्छा फिर जब पंडित जी उसकी व्याख्या करेंगे श्लोक पढ़कर त्रिविधम नरक से द्वार हम वो तीन प्रकार के नरक के द्वार है सारा बता के फिर कहेंगे कि ये काम विकार नरक का द्वार है। लेकिन अगर पति पत्नी के संबंध से समाज की जो नियम है जो परंपरा है उसके हिसाब से वो काम विकार नहीं कहा जाता, ये तो कृष्ण जी ने भी किया, ये तो राम जी ने भी किया, उसकी मिसालें देके और ब्रह्मचर्य की बात खत्म हो गई। फिर बाकी ब्रह्मचर्य क्या रहा, जो योगी का नियम है कि ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो और ये काम विकार नरक का द्वार है वो बताने की बजाय समाप्त कर दिया। तो इसीलिए तो पहले पहले झगड़े हुए जब बाबा ने आके कहा काम विकार नरक का द्वार है, इसको स्टॉप करो बंद करो, और ये महाशत्रु है इसको जीतने से ये जगत जीत बनोगे। तो फिर लोगों ने क्या कहा कि आप नई बात बताते हो, अगर पहले से ही लोग बताते चले होते, लिखी हुई तो है गीता में और सब जगह धार्मिक संस्थाएं तो बहुत बहुत बनी हुई है, लेकिन अगर नई बात वो सिखाते होते तो क्यों बिगड़ते और क्यों कहते कि आप नई बात बताते हो। इसका मतलब यह है कि उनको नहीं मालूम था तभी तो कहते हो नई बात बताते हो। और भगवान कहते हैं कि यही तो विकारों की जड़ है, देह विमान का सबसे पहला विकराल रूप तो यही है। तो धारणा की भी जितनी बातें हैं, अहिंसा की बात है, लोग कहते हैं अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन 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 करके फिर उसको डाइल्यूट कर देते हैं, ऐसा हो तो फिर मारना भी चाहिए, ऐसा हो तो ये भी करना चाहिए, कहते हैं भी नहीं कहते, फिर वो सहनशीलता वगैरह सब खत्म हो जाती है। थोड़ा बहुत क्रोध करने में कहते हैं कोई आदमी नहीं तो बच्चे सिर पर चढ़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, मजदूर काम ही नहीं करते, तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन बताकर वो कहते हैं इफ्स मी नो इफ्स बट मी नो बट्स, ये जो बट और इफ बताकर कहते हैं ना भाई विनाश होगा, उनसे पूछो विनाश होगा, इतने जो एटम बम बन गए हैं, ये हाइड्रोजन बम बन गए हैं, विनाश होगा, तो कहते हैं इफ देयर इज अ वॉर, अगर लड़ाई हुई तो, बट द क्वेश्चन इज इफ लड़ाई होगी कि नहीं होगी, ये भी तो साथ बताओ, हम तो ये पूछ रहे हैं। लेकिन वो ये बात कह देंगे, बात आप कहते हैं लेकिन अगर लड़ाई होगी तो, लेकिन हमारे ख्याल में लड़ाई होगी नहीं, तो आगे उनका दिमाग काम नहीं करता कि लड़ाई इतने सारे बम बना रखे हैं, ये कोई चूसने वाली गोलियां थोड़ी बना रखी हैं, वो उसको हजम कर देंगे, ये बना किसी ये रखे हैं अरबों रुपए खर्च करके, ये उनकी बुद्धि नहीं चलती। तो ये जो हमारे चारों सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये शब्द तो इनके वही हैं जो प्रचलित भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनकी अलौकिकता, इनकी महत्वता कितनी है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें हर एक विषय को, कि इसका इसकी तुलना अभी तक जो सोशल सर्विस है, अभी तक जो योग सिखाए जाते हैं, अभी तक जो धारणा बताई जाती है, अगर वो होती कहीं पर तो नरसिंह नारायण बंदे होते, एक भी तो नहीं है। बाबा ने यही तो कहा कि जब इस धर्म का जो जड़ है, जो वृक्ष की शाखें रह जाती है, और जब इस आदि सनातन देंगे तो धर्म का तना ही नहीं रहता, उसकी रूट ही नहीं रहती, तब आके फिर से इसको लगाते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ मूर्तियां बन जाती है मंदिरों में, देवी देवता तो कोई भी नहीं है, इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म ना कह के आदि सनातन धर्म कह दिया, क्योंकि देवी देवता कोई है नहीं, और यह हिंदू कह दिया। तो ये चारों सब्जेक्ट का पहले हमारे माइंड में जो एक व्यापकता है, इसका जो स्वरूप है, विस्तृत स्वरूप, व्यापकता मैं उस भाव से नहीं कह रहा हूँ, परमात्मा सर्वव्यापक जिसको कहते हैं, इसका जो स्कोप है, जो इसकी वाइडर सेंस है, विस्तृत जो इसको विशालता जो इसकी हम कह दें, वो अगर हमारे सामने रहेगी तो हम इसके महत्व को पूर्ण रूप से समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा पुरुषार्थ है। अब इसमें एक एक सब्जेक्ट को हम देखें, मिसाल के तौर पर आप सेवा को ले लें पहले, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो लहर है सब तरफ जो चलती है, कोई एक मास का भी भाई बहन जो क्लास में चलने लगता है उसको भी सेवा का शौक तो लग जाता है कि सेवा करूं। बाबा का योग ही ऐसा है कि जो योग में बैठता है उसको कोई ना कोई टचिंग, कोई ना कोई प्रेरणा ऐसी मिलती है कि कोई ना कोई प्रकार की सेवा करे। तो सेवा का तो वैसे तो जो बच्चा पैदा होता है वो कुछ टाइम के बाद भाषा सीखने के बाद बोलना सीखना जानता है, लेकिन यहाँ पर तो ज्ञान बोलना शुरू हो जाता है, दो मास का बच्चा भी बोलना जान जाता है। तो ये जो हमारा सेवा का एक है, ये समझिए कि इंस्टीट्यूशन की ड्यूटी है, जो और कहीं नहीं, किसी ने और नहीं सिखाई कि ज्ञान लेके औरों को देना शुरू कर दो। लोग तो समझते हैं तुम एक गुरु है जिसको मंत्र देने का अधिकार है, बाकी सब हजारों की तादाद में तो चेले हैं सिर्फ, उनका काम सिर्फ सुनना है, सुनाने का अधिकार नहीं है उनको, वो किसी के काम में मंत्र नहीं पहुंच सकते। जो गुरु जी हैं उनको ही आप दक्षिणा दो, नारियल और पताशे और उनकी मालाएं चढ़ाओ, चरण उनका अमृत लो, और फिर उसके बाद गुरु जी जो है अगर उनकी कृपा हुई वो आपको मंत्र दे देंगे कान में वो भी, ताकि दूसरा कोई सुन ना ले, वो आउट ना हो जाए, नहीं तो फिर बाकी लेने कौन आएगा, और बताना नहीं किसी को, ये उसको वर्जित होता है बताना, ये देख लीजिए। और यहाँ बाबा कहते हैं जाओ मेरे मत भक्तों को ज्ञान दो, मेरे भक्तों को ज्ञान दो, बच्चे सेवा करो। तो सेवा होने से इतना विस्तार हुआ है, और संस्थाओं के जो इतने लोग आते हैं उनमें, एक तो उनकी धारणा नहीं इतनी ऊंची जिसकी वजह से ज्यादा संख्या आती है, सस्ता सौदा है, और दूसरा आप देखेंगे तो उसके बावजूद भी इतने वर्षों में भी उनकी संख्या इतनी नहीं हुई जिस तरह से हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जो कोई आता है, मैं भी सेंटर खोलूं, मेरे पास भी गीता पाठशाला हो, कोई प्रदर्शनी कर लूं, मैं भी गाइड बन के समझाऊं, हर एक में एक सर्विस का वो लग जाता है, तो बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। लेकिन इस सेवा का जो एक साथ साथ और क्या इसके जरूरी है, आप देखेंगे बाबा कहते हैं कि जो सेवा का ताज पहनता है भविष्य में भी उसी को ताज मिलता है, तो सेवा कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। और कल भी हम बता रहे थे कि जो त्याग है वास्तव में, वो त्याग इसी का नाम है कि जब हम अपना समय, अपने श्वास, अपना तन, अपना मन, अपना धन लोगों की सेवा में लगाते हैं, वो विकारों को छोड़ते हैं, और वो सब बात हमने बताई थी ना कि वो तो हमें करना ही चाहिए, वो तो समझ की बात है, लेकिन साथ साथ ये जो हम करते हैं जो हमारा सफल हो भविष्य में उसको कई गुना होकर हमें मिले, ये सेवा के साधन से होता है। तो इससे आप समझ जाइए कि सेवा का महत्व कितना है ना, बहुत महत्व। लेकिन अगर कोई ज्ञान न ले, ज्ञान पर पूरा ध्यान ना दे, ज्ञान की पूरी उसकी स्टडी की अटेंशन ना हो, जिसको कहते हैं कि अलग से समय लेकर मनन चिंतन ना करे, मुरली रोज ना पढ़े, क्लास रोज ना करे, ज्ञान की गहराई में ना जाए, तो उसकी सेवा पर क्या असर पड़ेगा? कौन बताएगा? सेवा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है? सेवा की तुलना में सेवा के साथ उसका क्या मेल है? क्योंकि आप देखिए, जो सेवा हम करते हैं ज्ञान द्वारा ही तो सेवा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हम समझाने लगते हैं कोई भी पॉइंट, कोई भी एक विषय, अगर हमारे पास ज्ञान के पॉइंट्स भरपूर नहीं है, हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्नों का खजाना पूरा नहीं है, तो हम उसको कन्विंस कैसे करेंगे? तो इसलिए सेवा हम करना चाहते हैं, लेकिन सेवा करने के लिए अगर हम स्टडी पूरी ना करें तो फिर सेवा करने के हम योग्य कैसे बनेंगे? तो इसलिए कोई जो जिसको शौक है कि मैं सेवा करूं, अगर ज्ञान का शौक उसको नहीं है तो सेवा में भी उसकी पूरी सफलता नहीं होगी। पूरा उसको ज्ञान पर अधिकार ना होने से किसी को वो कन्विंस नहीं कर पाएगा। ठीक बात है कि नहीं?